جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو آیت نمبر 37 سے 44 تک کی ہم نے خلاصہ تفسیر پڑھنا کل مکمل کر لیا تھا، تو اب ہم پیج نمبر 476 کے اوپر معارف و مسائل ان کے پڑھیں گے. تو معارف و مسائل میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت نمبر 37 میں کہ قوم نوح لما کذب الرسل، کہ قوم نوح کی کا معاملہ کیا تھا کہ جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اغرقناہم تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنا دیا، للناس آیا انسانوں کے لیے نشانی، وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کر کے رکھا ہے ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب. تو اب اس پہ سوال ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ پہلے رسول نہ ان کے زمانے میں تھے نہ انہوں نے جھٹلایا، ٹھیک ہے. تو منشا اس کا یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور چونکہ اصول دین سب انبیاء کے مشترک ہیں اس لیے ایک کو جھٹلانا سبھی کے جھٹلانے کے حکم میں ہے. صحیح ہے، کیا مطلب کہ انہوں نے تو صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس جو رسول بھیجے گئے تھے وہ ایک ہی تھے، حضرت نوح علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے. اور نوح علیہ السلام سے پہلے جو ہے نا جو نبی آئے تھے تو وہ کوئی یعنی وہ رسول تو تھے نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول اور نبی کے درمیان ایک ٹیکنیکل فرق اس لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک ہی لفظ کو جو ہے وہ مختلف کانٹیکسٹ میں مختلف سیاق و سباق میں تھوڑے سے مختلف معانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کانٹیکسٹ بدل جانے سے نا الفاظ کے معنی بھی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. تو رسول کا جو لفظ ہے وہ ہر بھیجے ہوئے نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنا کر کے اپنا خلیفہ بنا کر کے براہ راست ڈائریکٹلی اپنا نمائندہ بنا کر کے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، ان سب کو رسول کہتے ہیں. وہ سارے ہی بھیجے گئے ہیں کیونکہ رسول بمانے مرسل، ٹھیک ہے نا، مرسل کا مطلب ہوتا ہے اینی ون ہو ہیز بین سینڈ، ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو رسول کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اسی رسول کا استعمال ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو نبی بغیر کسی کتاب کے آئے، بغیر کسی آسمانی کتاب یا آسمانی صحیفے کے جو بھیجے گئے نا، تو ان کو تو نبی کہا جاتا ہے. اور جن کو کسی آسمانی کتاب یا صحیفہ میننگ پارچمنٹس، جو پیجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لکھی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے نا، تو جن کو ان صحیفوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو ان کو جو ہے وہ رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر رسول جو ہیں وہ کتنے ہو گئے، وہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس بھی صحیفے آئے تھے، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کے پاس زبور آئی تھی، ٹھیک ہے. تو پھر اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے، اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پھر رسول جو ہے وہ ایک الگ کیٹیگری ہو گئی، یعنی وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں، جبکہ باقی جو ہیں وہ صرف نبی ہوتے ہیں، ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ी सी डेफिनेशन तब्दील हो गई, लेकिन अदरवाइज जो है वो इन जनरल टर्म्स जो है वो हर भेजे गए इंसान को रसूल कह दिया जाता है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई इन लोगों के पास, ये जो कौम थी जिसको कि गर्क कर दिया गया था, ठीक है ना, जिसको तूफान नूह का अजाब हुआ था, गर्क करने का अजाब हुआ था, तो इनके पास तो दूसरे ना तो नबियों का कोई जिक्र आता है, ना किसी मैसेज के साथ भेजे हुए किसी रसूल का जिक्र आता है। इनके पास तो सिर्फ एक ही नूह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे, राइट। तो फिर अल्लाह ताला ने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए कि कज़्ज़बुर रुसुला, कि जब इन्होंने रसूलों को झुठलाया। इन अल्फाज से तो ऐसा लगता है ना कि जी बहुत सारे रसूल भेजे गए थे इनके पास और इन्होंने उन सबको झुठला दिया, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि बात ये है कि चूंकि उसूल दीन सब अंबिया के मुश्तरक है, ठीक है, यानी जितने रसूल दुनिया में आए, जितने पैगंबर, जितने नबी दुनिया में आए, उसूल तो सबका मुश्तरक है ना कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो सबका मुश्तरक है, ठीक है ना, मरने के बाद उठाया जाना, ये तो हर नबी ने बताया, ठीक है। तो ये सारे उसूल दीन होते हैं, ये तो हर एक के मुश्तरक है, इसलिए एक को झुटलाना सभी के झुटलाने के हुक्म में है, ठीक है ना। तो ये गोया एक तफसीर हो गई इस आयत की, ठीक है, कि दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन दी अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है ना, क्योंकि हमें दीगर मुकाम से क्या पता लगता है कि सिर्फ एक रसूल भेजे गए थे, राइट, और इस मुकाम से क्या पता लगता है, यानी इस आयत से क्या पता लगता है कि बहुत सारे रसूलों को इन्होंने झुटाया। तो अब ये क्या हो गई, ये एक जाहिरी इख्तलाफ हो गया, अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, कुरान की एक आयत की दूसरी आयत के साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना। इसी कॉन्ट्रडिक्शन को, या इसी किस्म की जो आउटवर्ड अपेरेंट जाहिरी कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, इन्हीं को रिजॉल्व करना जो है ना, ये तफसीर कहलाता है, या इनको रिजॉल्व करना भी तफसीर का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, एक और इसके अंदर मामला ये भी है कि जो हमारे बड़ों ने तफसीर की किताबों के अंदर लिखा, और एक मशहूर किताब बच्चों को पढ़ाई जाती है और इवन मदारिस में भी पढ़ाई जाती है इब्तदाई दर्जों में, कसस उन नबीयीन, राइट, जिसके अंदर के हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अली मियां भी कहा जाता है, राइट, उन्होंने वो कसस नबीयीन लिखी है। तो कसस नबीयीन के अंदर उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जहाँ पे जिक्र किया है ना, तो वहां पर उन्होंने एक स्टोरी बाकायदा लिखी है, कसस, राइट, एक पूरी स्टोरी बांध दी है, ठीक है ना। वो क्या स्टोरी बांध दी है, और जाहिर है उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बांध दी, बल्कि जो उन्होंने हदीसों का इल्म हासिल किया उसकी बुनियाद पर ही वो स्टोरी बांध दी, कि क्या कि ये जो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, तो ये बुतों को पूजते थे, है ना। तो इन बुतों का तस्करा अल्लाह ताला ने सूरह नूह के अंदर फरमाया है, राइट, कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि ला तजरुन्ना आलिहतकुम, कि आप इनके ना आलिहा को नहीं छोड़िएगा, यानी इनके जो इलाह है, इनके जो माबूद है ना, आप इनको नहीं छोड़िएगा, ला तजरुन्ना आलिहतकुम वला तजरुन्ना वद्दं वला सुवाउं वला यगूसा व यऊका व नसरा, और आप नहीं, हरगिज नहीं छोड़िएगा, एक मिनट, नहीं, ये मैंने गलत, एक चीज मैंने गलत तर्जुमा किया है इस आयत का, लेट मी जस्ट वेरीफाई, हाँ नहीं, नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं कहा, बल्कि कालू, ठीक है, इन लोगों ने कहा, यानी कौम की तरफ नस्बत हो रही है, कि वो जो कौम वाले थे ना, उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ला तजरुन्ना आलिहतकुम, तुम अपने खुदाओं को मत छोड़ना, ठीक है ना, हरगिज मत छोड़ना, वो ला तजरुन्ना, और हरगिज मत छोड़ना वद को और ना सुवा को और ना यगूस को और ना यऊक को और ना नसर को, ठीक है ना, ये जो थे ना, ये इन बुतों के नाम थे कि जिनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पूजा करती थी। ठीक है, तो ये बुत जो है ना, ये कहाँ से आए थे, ये इनके नाम ये क्या कहाँ से पड़ गए थे ये ना, तो इसकी हिस्ट्री लिखी है हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने। ठीक है, कि ये जो है ना, इनके जमाने इनके कौम के अंदर एक दो जनरेशन पहले ये नेक लोग थे जो कि इनकी कौम के अंदर जो है ना वो रहा करते थे। ये नेक लोग कैसे थे, कैसे नेक थे ये नेक लोग जो थे ना, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी शायद उसी जमाने में जिक्र आता है, लेकिन हजरत शीश अलैहिस्सलाम का तो डेफिनेटली जिक्र आता है आदम अलैहिस्सलाम के बाद। ठीक है, तो ये उन नबियों के जो बताई हुई तालीमात थी ना, उन तालीमात के ऊपर जमे हुए लोग थे, ये नेकी के रास्ते के ऊपर जमे हुए लोग थे। ठीक है, ये जो है वो खुद भी नेक अमल करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, तौहीद के ऊपर कायम रहते थे, और ये दूसरे लोगों को भी नेकी की तालीम दिया करते थे। ये नबी नहीं थे ये लोग नेक सालेह लोग थे। ठीक है, तो ये नेक सालेह लोग जो है ना, ये बहुत यानी ये तकवा वाले लोग थे, इनके लिए अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी थी। ठीक है ना, क्योंकि जो जो तकवा अख्तियार करता है, तो जो नॉर्मल किस्म के लोग होते हैं उनके दिल में तकवा वाले लोगों के लिए मोहब्बत आ जाती है। तो अकीदत मोहब्बत, ये लोग जब दुनिया से गुजर गए, इंतकाल फरमा गए, तो अब इन लोगों ने सोचा, ठीक है, इन लोगों ने सोचा या इनके जहन में आइडिया आया, इनके जहन में ख्याल आया कि भाई ये नेक लोग तो इस दुनिया से चले गए, तो हमें ना इनकी कोई यादगार बनानी चाहिए ताकि ये लोग हमें याद रहें, हम इनकी यादगार को देखेंगे और हमें वो याद आ जाएंगे, तो उनकी तालीमात भी याद आ जाएंगी, राइट, कि उन्होंने हमें क्या क्या बातें बताई थी, किन चीजों से हमें रोकते थे, क्या करते थे वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, तो इन लोगों को ये ख्याल आया। अब ये बात हम पीछे तफसील साहब के साथ कर चुके हैं कि ये ख्याल आता नहीं है बल्कि ख्याल डाला जाता है, कोई डालता है जहन के अंदर, और वो डालने वाला कौन होता है, शैतान। ठीक है, शैतान दिल के अंदर बातें डालता है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, तो इन्होंने फिर उनके बुत बना लिए और तस्वीरें यानी इनके उनकी शबीहें बना ली। ठीक है, कि भाई एक ऑफ कोर्स आजकल की कैमरास तो उस जमाने में थे नहीं, बहुत एक्यूरेट किस्म की उन्होंने कोई ऐसे स्टैचू भी नहीं बनाया होगा कि एग्जैक्ट जो है वो शक्ल सूरत वाली, उस जमाने में ऐसे टूल्स वगैरह शायद नहीं होते होंगे। बहरहाल उन्होंने जैसे भी अपने हिसाब से बुत बना लिए। ठीक है, तो उस बुत का नाम रख दिया कि हाँ भाई ये यगूस साहब थे, जैसे कहते हैं ना रहमतुल्ला अलैह, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फरमाए, नाउज बिल्ला, मतलब बुत तो शदीद जो है वो नफरत वाली चीज होती है, लेकिन इन्होंने जो नाम रखे उन रहमतुल्ला अलैह लोगों के ऊपर नाम रखे कि वो जो अल्लाह के रहमत वाले लोग थे ना, ये वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ये उनकी शबी है, ये इनकी शबी है, ये यगूस है, ये नऊख है, ये नसरा है। ठीक है, तो अब ये जो इन्होंने बना लिया है ना, तो अब इनकी जो है ना, फिर इन्होंने इनको देखते थे, खुश होते थे, इनको याद आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जब इनकी जनरेशन गुजरी, तो इन्होंने जो है वो यानी शैतान ने बात को आगे बढ़ाया कि अच्छा अब इनको ना तुम थोड़ा सा मोहब्बत के साथ जरा हाथ भी लगा लिया करो, मोहब्बत के साथ इनको चूम भी लिया करो, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते हाथ लगाना, चूम, हाथ लगाने से मुराद मारना नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो हाथ लगाते हैं, राइट, बोसा देना, इससे बात बढ़ते बढ़ते जो है वो सुजूद और रुकू वगैरह तक पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने फिर इनकी इबादत शुरू कर दी। ठीक है, तो ये जो इनके यहाँ बुत परस्ती शुरू हुई, इसकी ये तफसील लिखी है। ठीक है, तो अब ये जो मामला हुआ, इनके यहाँ जो इबादत हुई, ठीक है ना, तो अब ये जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि ये तो शैतान का निजाम होता है कि वो इंसानों के दिलों में बुरे आइडियाज, गलत आइडियाज डालते हैं कि हाँ भाई शबी बना लो, इस तरीके से तुम इनको याद रख सकोगे, तुम इनको जो है वो जरा चूमना शुरू कर दो, तुम इनकी इनको बोसा देना शुरू कर दो, ये सब तो शैतान कर रहा होता है, लेकिन क्या दूसरी तरफ का खाना खाली होता है, राइट, दूसरी तरफ कोई इनको रोकने वाला नहीं होता, कोई इनको समझाने वाला नहीं होता, नहीं, ये बात भी कुरान से साबित है कि हमेशा ये दोनों पैरेलल सिस्टम्स चल रहे होते हैं, बुराई की तरफ बुराने वाले शैतान का सिस्टम भी चल रहा होता है, और रहमान की तरफ, अच्छाई की तरफ, जन्नत की तरफ बुलाने वाले रहमान का सिलसिला भी चल रहा होता है। ठीक है ना। तो रहमान के बंदे जो होते हैं वो हमेशा होते हैं मुआशरे के अंदर मौजूद, ठीक है। वो लोगों को बुराई से रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो दुनिया परस्त लोग होते हैं, दुनिया की मोहब्बत गालिब होती है और इस किस्म की यानी जो पाबंदियां बर्दाश्त करने वाले मिजाज नहीं होते हैं, तो फिर वो नेकों की बात नहीं मानते बल्कि बुरों की बात मानते हैं। जैसे कि हमारे चारों तरफ ये मुशाहिदा हमारा भी होता है और अपने अपनी जिंदगी में भी झांक करके देखें तो हमसे भी ये गलतियां होती रहती हैं कि नेकों की बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं, बुरों की बातों को हम एम्ब्रेस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ना इन लोगों ने उन लोगों को झुठलाया जो कि खुद तो रसूल नहीं थे लेकिन रसूलों के रसूल तो थे ना, ठीक है। तो उन लोगों को इन्होंने झुठलाया और बिल आखिर जो है ना वो होता क्या है कि जब झुठलाते रहते हैं ना तो अल्लाह ताला भी जो है ना फिर सजा के तौर पर, ठीक है ना, सजा के तौर पर उस कौम से अपने नेक बंदों को उठा भी तो लेते हैं ना, राइट, वापस भी तो बुला लेते हैं ना, महरूम भी तो कर देते हैं ना, ठीक है। तो फिर जो है वो नेक लोग जो है वो फिर या तो खत्म ही हो गए होंगे फिर, और बिल आखिर अल्लाह ताला ने अपने अगले नबी को जो हजरत नूह अलैहि सलाम थे उनको मबूस फरमाया और वो जो है वो फिर पूरी कामिल शरीयत लेकर के आए और उन्होंने जो है फिर लोगों को यानी एज अ नबी बुलाना शुरू किया और बुलाते गए बुलाते गए, 950 साल तक बुलाते गए। और 950 साल के अंदर भी जो है वो ये नहीं कि नूह अलैहि सलाम की उम्र जो है वो 950 साल थी तो इनकी कौम की उम्र भी 950 साल थी, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि इनकी कौम की उम्र जो थी ना वो वही एवरेज उम्र थी जो उस जमाने में लोगों की हुआ करती थी, विच वॉज 350 साल, 300 से 350 साल ये एवरेज उम्र हुआ करती थी उस जमाने में, ठीक है। एवरेज, एक्सेप्शन होते थे, जैसे नूह अलैहि सलाम एक एक्सेप्शन हुए, राइट, उसी तरह बनी इसराइल के अंदर भी आता है ना हदीस मुबारका के अंदर शब कदर, राइट, शब कदर के जो माशाल्लाह चल रहे हैं इस वक्त मामला, तो क्या तफसील में आता है कि एक आदमी होता था बनी इसराइल का जिसको अल्लाह ताला ने 1000 साल की उम्र दी थी और वो हर रोज जिहाद किया करता था दिन में और रात में सारी सारी रात इबादत किया करता था, 1000 साल तक वो इस तरीके से करता था। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था, ऐसा नहीं था कि सबकी उम्र 1000 साल होती थी, लेकिन 300 साल तो होती ही थी एवरेज एज, ठीक है। तो इनकी जो है वो एक नस्ल गुजर गई, नूह अलैहि सलाम तबलीग करते रहे, एक नस्ल का इंतकाल हो गया, उनकी अगली नस्ल ने जगह ले ली, वो 300 साल की उम्र गुजार करके वो पूरी की पूरी जो है वो जनरेशन दुनिया से चली गई, फिर तीसरी नस्ल भी इस दुनिया के अंदर पैदा हुई और वो भी 300 साल तक जिंदा रहे। ये जो गर्क करने का अजाब आया था ये पहली दो नस्लों के ऊपर नहीं आया था, ये तो तीसरी नस्ल के ऊपर आया था। पहली दो और इनके जो बाप और इनके जो दादे थे वो तो दुनिया से जा चुके थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना फिर एक तो ये कि उसूल दीन चूंकि सब अंबिया के मुश्तरक हैं तो एक नबी को झुठलाना सब नबियों को झुठलाने के मुतरादिफ है, और दूसरी बात ये कि इनसे पहले भी जो ऐसे लोग गुजरे थे ना कि जिन्होंने इनको या इनके बाप दादाओं को शिर्क से रोका था, इन्होंने उन लोगों को भी झुठलाया था, ठीक है। तो यही तफसीर जो है ना फिर बाकी तमाम तफसीरों के साथ जोड़ करके अगर की जाए तो फिर यही बात समझ में आती है कि इन्होंने ये काम भी किया था जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हजरत ने, लेकिन इन्हीं हजरत ने यानी हजरत मौलाना मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने ही ये बात भी लिखी है सूरह यासीन की तफसीर के अंदर, ठीक है, कि भाई हर यानी अल्लाह ताला ने रसूल भी भेजे, डायरेक्टली अपॉइंटेड रसूल भी भेजे, और जिन जगहों पर डायरेक्टली अपॉइंटेड रसूल नहीं गए वहां पर रसूलों के रसूल गए, ठीक है। तो उन रसूलों को भी लोगों ने जो झुटलाया ना तो उनके साथ भी फिर अल्लाह ताला का अजाब का मामला हुआ, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि अल्लाह ताला तो हुज्जत तमाम करते हैं, मैसेजेस पहुंचाते हैं, ठीक है ना, चाहे डायरेक्ट रसूल के जरिए से पहुंचाएं, चाहे रसूलों के रसूल के जरिए से पहुंचाएं, या जो है वो किसी और अंदाज से पहुंचा दे, जैसे कि हमारे जमाने में बहुत आम है कि अब तो ना तो रसूल हैं ना बहुत सारे मुकामात पर रसूलों के रसूल पहुंचते हैं, राइट, उलमा मशाइख हर जगह तो नहीं पहुंचते, चलो अल्लाह ताला ने तबलीगी जमात का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है, राइट, बेशक तबलीगी जमात जो है ये रसूलों के रसूल है लेकिन ये भी 100% मुकामात पर तो नहीं पहुंचे हैं ना, हाँ बहुत जबरदस्त कवरेज है तबलीगी जमात वालों की लेकिन हर जगह तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इस दौर के अंदर फिर अल्लाह ताला ने इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग का सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, टेलीफोनिक सिस्टम का स्टार्ट किया हुआ है, इवन टेलीविजन का सिस्टम जो कि शर के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन उसी शर के बीच में बिटवीन द लाइंस खैर के मैसेजेस भी तो पहुंच ही रहे होते हैं ना, ठीक है ना। कभी कोई वो हदीस आ जाती है, कभी कोई जो है वो मैसेज आ जाता है, कभी कोई वाकया उसके अंदर आ जाता है, राइट। तो वो भी तो खैर का ही मैसेज कहलाएगा, अगरचे के उसकी वजह से हरगिज हरगिज टेलीविजन को हलाल करार नहीं दिया जा सकता। भाई अल्लाह ताला तो सलमान रुश्दी ने जो सैटैनिक वर्सेस लिखी थी, सैटैनिक वर्सेस को भी अल्लाह ताला ने बहाना बना दिया किसी का मुसलमान होने का। बहुत सारे लोग मुसलमान हुए सैटैनिक वर्सेस के बाद, राइट। लेकिन सैटैनिक वर्सेस क्या फिर इसका मतलब है कि बड़ा जबरदस्त काम किया था उस मलून ने, उस खबीस ने, राइट, कि हाँ भाई इतने लोग मुसलमान हो गए सैटैनिक वर्सेस की वजह से, ये तो नहीं कह सकते ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से टीवी जो है ये भी उम्मुल खबाइस है विदाउट एक्सेप्शन। ये खबाइस यानी बुराइयों की ये माँ है, इससे जन्म लेती हैं बुराइयां। तो इससे अगर अल्लाह ताला किसी को कोई खैर का मैसेज पहुंचवा करके मुसलमान बना दें तो उससे टीवी हलाल नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके को जरिए को इस्तेमाल फरमाते रहते हैं इस दौर के अंदर भी, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है मैसेजेस पहुंचाने का। इसके बाद हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह मारिफुल मसाइल के अंदर असहाबुर रस का तस्करा करते हैं, जो कि अगली आयत के अंदर था कि आद को अल्लाह ताला ने बर्बाद किया, समूद को और असहाबुर रस को। आद और समूद का मामला ये था कि कौमें ये जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, तारीख की किताबों के अंदर ये मौजूद है कि इनकी जो इनके इनके जो बेटे थे ना, चार पांच बेटों का जिक्र आता है ना कि जो बच गए थे कि कश्ती में सवार होकर के, तो फिर वो बेटे जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए थे, ठीक है। और अल्लाह ताला ने बनाए भी उनको थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट था, किसी का रंग जो है वो यानी काला था, तो वो अफ्रीका में जाकर के बसा, तो वहां पे पूरे उसकी नस्ल पूरी चलनी शुरू हो गई, ठीक है। और किसी के जो है वो शक्ल जो है वो शायद ये ओरिएंटल जो उसको चाइनीज शक्ल कहते हैं, राइट, वो उस तरफ जाकर के बसे, तो उनकी शक्ल, उनकी जो औलाद दुनिया के अंदर फैली वो उस शक्ल की थी, किसी की गोरी शक्ल की थी, किसी की जो है वो हमारी तरह के बादामी शक्ल की थे। बहरहाल तो उन्हीं से जो है वो फिर दुनिया के अंदर सारी की सारी नस्लें जो है वो फैली, ठीक है। उमूमी तौर पर यही बात समझी जाती है, कुरान की आयत से भी यही तफसीर निकलती है कि तूफान नूह के बाद जितनी दुनिया के अंदर आबादी फैली है वो सारी की सारी नूह अलैहिस्सलाम के बेटों ही से फैली है, ठीक है ना। अब एक और बात भी इसके अंदर आती है, जो कि आपकी जो तफसीर की क्लासेस हमारी अलग होती है, तो उनके अंदर ये बात डिस्कस हुई है कि भाई नस्ल जो फैलती है वो सिर्फ बेटे से तो नहीं फैलती है ना, राइट, यानी मर्द से तो बच्चे नहीं होते ना, बच्चे तो अलग से होते हैं ना, ठीक है। तो बेटों से नस्ल फैली तो उसके लिए लड़कियों की भी तो जरूरत पड़ी होगी ना, लड़कियों से शादी भी तो करी होगी ना, तो वो लड़कियां कहाँ से आई, वो औरतें कहाँ से आई जिनसे कि इनके बेटों की शादी हुई। वो औरतें जो थी वो इनके अपने भाई बहन तो नहीं थे, क्योंकि वो बहन के साथ शादी वाला सिलसिला जो था वो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में था खाली, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त तो और कोई माँ बाप ही नहीं थे, बस वही थे। तो जो जुड़वा होती थी तो उसके साथ शादी नहीं होती थी, दूसरा जो जुड़वा पेयर पैदा होता था आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को, तो उसके साथ शादी होती थी, ठीक है। लेकिन ये बहन भाई की शादी वाला मामला तो उस वक्त खत्म हो गया फिर उसके बाद, ठीक है। तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की किससे शादी हुई, नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की शादी जो है वो उन्हीं लड़की औरतों से हुई होगी जो कि दीगर ईमान वाले उनके साथ कश्ती नूह में सवार हुए थे, ठीक है। तो इनकी शादियां जो है वो उनके साथ उन औरतों के साथ हुई और फिर उससे नस्ल फैली। तो जीन्स जो होते हैं वो तो फिर औरत से भी आते हैं ना और मर्द से भी आते हैं, तो जो मेल जीन्स आए वो नूह अलैहिस्सलाम से आए और जो फीमेल जीन्स आए वो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जो दीगर ईमान वाले थे उनसे आए होंगे, ठीक है ना। बस ये बेसिकली एक यानी जहन की जहनी बात है, बाकी इसके कोई इसके ऊपर कोई शरीफ उसूलों वगैरह का तो दारो मदार है नहीं, लेकिन बहरहाल ये बात समझने की है कि जो आगे इंसानों की नस्लें फैली हैं वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से फैली हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो जो दीगर ईमान वाले थे उनके भी जीन शामिल होंगे। बहरहाल तो उनके एक बेटे से जो है वो आगे जा करके ना, यानी इनके बेटे की गालिबन दो नस्लों के बाद एक आदमी था, उसका नाम था आद। तो उस आद ने जो कौम बसाई ना, तो उस कौम को फिर कौम आद कहा जाता है, ठीक है ना, यानी उसकी जो नस्लें थी ना आगे, तो उनको फिर कौम आद कहा जाता है। तो ये लोग जो है ना आदे ऊला कहलाते थे, फर्स्ट आद जनरेशन जो कि आद के औलादे थी, तो उसको आदे ऊला कहते थे। इनके दरमियान जो है वो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, और ये लोग भी फिर वही बुतपरस्ती वगैरह और सरकशी के अंदर शुरू हो गए थे। तो हूद अलैहिस्सलाम ने आकर के इनको मना किया और उनको तौहीद की दावत दी, और वही सब कुछ हुआ कि इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो इनके ऊपर फिर हवा का अजाब आया और ये जो है वो बर्बाद कर दिए गए। तो इनके दो तीन जनरेशन के बाद जो कौम आई उसको कौम समूद कहा जाता है, ठीक है ना। ये कौम समूद जो है ये आदे सानिया की, ठीक है, यानी इसको आदे सानिया भी कहा जाता है कि आद की ये नेक्स्ट जनरेशन थी, ठीक है। तो उसके पास फिर अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहि सलाम भेजे, और ये वही वही सालेह अलैहि सलाम की ऊँटनी वाला वाकया कि इन्होंने फिर सरकशी करी, ऊँटनी का मुतालबा किया कि एक ऐसी ऊँटनी पहाड़ में से निकाल कर दिखाओ, तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने सालेह अलैहि सलाम को ऐसी ऊँटनी अता फरमा दी, लेकिन इन लोगों ने फिर भी मान करके नहीं दी और ऊँटनी को ही मार दिया जान से। तो फिर उनके ऊपर भी अदाब आया, उनको तबाह कर दिया। तो इन सब की तो तफसीरात हमें हदीसों से और दीगर मुकामात से मिल जाती हैं कुरान में ही, लेकिन अस्हाब रस के बारे में लिखते हैं कि रस लुगत में कच्चे कुएं को कहते हैं, यानी ऐसा कुआं, ऐसी वेल कि जिसके मुंडेरे जो है ना वो पक्की नहीं कर दी गई, जिसके वॉल्स बाकायदा चारों तरफ ना बना दी गई हो, उसको कच्चा कुआं कहेंगे। यानी बस पानी नीचे से एक होल आपने डिग कर दिया है और होल के अंदर जो है वो पानी आना शुरू हो गया है, क्योंकि पानी जो है वो नीचे जमीन के अंदर वाटर रिजर्वॉयर्स अल्लाह ताला ने बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े गोया कि मिशकीजे, पानी से भरे हुए मिशकीजे अर्थ क्रस्ट के अंदर नीचे मौजूद हैं, ठीक है ना। जब आप वेल डिग करते हैं तो वेल डिग करते 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 बिलाखिर आप उन वाटर रिजर्वॉयर्स को जो है ना वो रप्चर कर देते हैं, उनके अंदर तक पहुंच जाते हैं, उनको यानी होल कर देते हैं। तो वो जो आप छोटा सा एक होल कर देते हैं ना, बहुत टाइनी सा ही होल होता है वो, वाटर रिजर्वॉयर जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। ये ऐसे ही है जैसे कि पानी का बहुत बड़ा मिशकीजा हो और उस मिशकीजे के अंदर अगर आप एक बहुत बारीक सी नीडल सुई लेकर के उस मिशकीजे के अंदर एक होल बना दें, ठीक है ना, तो वो जो होल होगा उस बड़े से मिशकीजे के अंदर एक सुई बराबर जो होल होगा, तो उस होल के अंदर से एकदम से सारा पानी तो नहीं निकल जाएगा ना, बल्कि थोड़ा थोड़ा रसना शुरू हो जाएगा, राइट। छोटे छोटे से जो है ना वो ड्रॉप्स भी नहीं निकलेंगे, बल्कि ड्रॉप से भी छोटी चीज निकलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल कुएं का यही मामला होता है कि जो आपने होल बनाया होता है हमारे एतबार से वो बहुत बड़ा होल होता है, लेकिन उस ओवरऑल बॉडी ऑफ वाटर के एतबार से तो बहुत ही बारीक सा होल होता है, ठीक है ना। तो उस होल में से ना पानी जो है वो रस रस करके फिर उस वेल के अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब इस को जो है वो लोग पक्का कर देते हैं, बकायदा ईंटें वगैरह लगा देते हैं उस वेल के जो 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 दीवारें होती हैं उनको पक्का करने के लिए। तो अगर ईंटें लगा दें तो फिर वो पक्का कुआं कहलाएगा, और अगर ईंटें ना लगाएं तो फिर वो कच्चा कुआं कहलाएगा। तो असाब रस जो है, रस एक कच्चे कुएं को कहते हैं। कुरान करीम और किसी सही हदीस में इन लोगों के तफसीली हालात मजकूर नहीं है। इसराइली रिवायात मुख्तलिफ हैं। इसराइली रिवायात क्या होती हैं कि जो यहूद के उलमा ने मुसलमानों को बताई, ठीक है, या तो वो यहूदी उलमा जो कि मुसलमान हो गए थे, ठीक है, जैसे काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना, ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, ये मुसलमान हो गए थे। तो इन्होंने फिर ना मुसलमानों को बहुत सारी वो रिवायात भी बताई जो कि तौरात और इंजील वगैरह से इन तक पहुंची थी, ठीक है। तो ये जो रिवायात आती है ना, इनको इसराइली रिवायात कहते हैं, क्योंकि ये बनी इसराइल के सोर्सेस से मुसलमानों को मिली, ठीक है। तो इन रिवायात का मामला ये होता है कि ये सच्ची भी हो सकती हैं और ये झूठी भी हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों ने तौरात और इंजील के अंदर बहुत ज्यादा तहरीफें करी हुई हैं, चेंजेस करी करी हुई हैं, ठीक है। तो अब इस इसराइली रवायात के बारे में हमारे जो अकाबरीन यानी सहाबा कराम और जो उम्मत के बड़े उलमा थे ना, तो उनके फिर ये मामला था कि कुछ तो हमारे अकाबरीन ने फरमाया कि इन इसराइली रवायात की हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, राइट।
एब्सोल्युटली वी आर इन नो नीड ऑफ देम, ठीक है। तो इनको बिल्कुल जो है वो सुनना ही नहीं चाहिए, इनको जो है ना वो अपने किताबों के अंदर लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरे अकाबरी ने फरमाया कि भाई अगर तो ये यानी शरीयत के खिलाफ हो, जो उसूल दीन है उनके खिलाफ हो, तो फिर तो डेफिनेटली इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये उसूल दीन के या शरीयत के खिलाफ नहीं है ना, तो फिर उनको एक्सेप्ट कर लेने में और अपनी किताबों में नकल कर देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत सारी किताबें ऐसी भी हैं, तफसीर की किताबें और मुख्तलिफ और तारीख की किताबें, कि जिनके अंदर इसराइली रवायत जो है वो मिल जाती है लिखी हुई, ठीक है ना। तो इसराइली रवायत जो है ना फिर असहाब उर्रस के बारे में मुख्तलिफ हैं, हमारे कुरान में और हदीस के अंदर जो है वो कोई तफसीली हालात नहीं है। राजे ये है कि कौम समूद के कुछ बाकी मानदा लोग थे जो किसी कुएं पर आबाद थे। कजा फिल कामूस व दुर, यानी दुर्रुल मंसूर होगी यह हदीस की किताब, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी एक तो कामूस डिक्शनरी है, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर जिन्होंने कामूस को मुरतब किया उन्होंने रस के एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखी है, और जो दुर्रे मंसूर एक हदीस की किताब है उसमें हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत भी एक नकल की गई है कि ये लोग जो थे ना वो कौम समूद के जो बचे हुए लोग थे, यानी जो ईमान वाले उस अजाब से बच गए होंगे, तो वो फिर वहां उस जगह से निकल करके किसी और जगह पर जहाँ पे एक कुआं था वहां जाकर के आबाद हो गए थे। और फिर उनकी भी आगे वाली नस्लें, वही शैतान का तो सिलसिला चलता रहता ना, शैतान तो यानी इमेजिन तो करें कि इसने कितने लोगों को गुमराह किया है और कितने लंबे अरसे से गुमराह करता चला आ रहा है, इसके पास गुमराह करने के कितने आइडियाज होंगे, कितना इसके पास जो है वो टेक्निक्स होंगी, ट्रिक्स होंगी कि कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे गुमराह किया जा सकता है, राइट। तो दिस इज द काइंड ऑफ एनिमी दैट वी आर अप अगेंस्ट, राइट। हमारा जो सामना है ना वो इस किस्म के दुश्मन के साथ है जो कि हजारों लाखों साल से अपने काम के अंदर लगा हुआ है, इसका तजुर्बा और इसका मुशाहिदा यानी कितना होगा हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसने फिर इन लोगों को भी राय रास्ते हटाया और फिर इनके ऊपर भी अजाब आया, अस्हाब उर्रस के ऊपर। तो उनके अजाब की कैफियत भी कुरान में मंसूस और किसी सही हदीस में भी मजकूर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या लिखा है कि जो स्मार्ट टीवी है जिसमें ना कोई केबल ना कोई डिश की कनेक्शन हो, बल्कि उससे नात बयानात और ज़रूरी इंफॉर्मेशन सुनने के लिए यूज करना जायज होगा या टीवी बिल्कुल ना यूज करें? भाई बात दरअसल ये है कि यानी जो बात अभी हो रही थी ना टेलीविजन की, तो उसको तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। और हमारी जो आखिरी बच्चों की तफसीर क्लास हुई थी उसके अंदर भी ये बात आज ने समझाई थी, शायद आपने या दूसरों ने सुनी होगी कि टेलीविज़न की जो एक क्लासिकल डेफिनेशन है ना वर्ड टेलीविज़न की खास, तो वो इस तरह से हम लेते हैं कि जिनके पीछे जो है ना वो यानी एक केबल कनेक्शन हो, ठीक है, या डिश का कनेक्शन हो किसी टेलीविजन स्टेशन के साथ, वन और मोर टेलीविजन स्टेशन के साथ जो है वो कनेक्टेड हो, ठीक है ना। अब उसकी एक नेचर बन जाती है ऐसे टेलीविजन सेट की जो कि पीछे से टेलीविजन स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। वो नेचर क्या है कि टेलीविजन स्टेशन वाले जो होते हैं ना, ट्रांसमिशन जो होती हैं वो उन्होंने करनी है, ठीक है, कि अब कौन सा प्रोग्राम दिखाना है और अगला कौन सा प्रोग्राम दिखाना है, उसके बाद कौन सा प्रोग्राम दिखाना है, राइट। ये उनके कंट्रोल में है कंप्लीटली। दूसरा ये कि उन्होंने प्रोग्राम्स को इंटरप्ट करके बीच में क्या दिखाना है ये तो वो अनाउंस भी नहीं करते। चलो प्रोग्राम्स की लिस्ट अनाउंस करते होंगे कि भाई 3 बजे ये प्रोग्राम आएगा, 4 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, तो वो तो चलो जी उनका एक स्केड्यूल होता होगा तो लोगों को पता चल जाता होगा, लेकिन उन प्रोग्राम्स के बीच में क्या दिखाना है, प्रोग्राम के अंदर क्या दिखाना है, कॉन्टेंट क्या होगा उस प्रोग्राम का, क्या क्या उसके अंदर जो है वो आपको झूठ बोले जा रहे होंगे, या जो है वो नाच गाना दिखाया जा रहा होगा, और क्या क्या जो है वो उसके अंदर शक्लें दिखाई जा रही होंगी, ये सारा कुछ तो वो अनाउंस नहीं करते, ठीक है ना, वो उनके कंट्रोल में होता है सारा का सारा, ठीक है। तो जो पीछे से कनेक्टेड होते हैं ना, उनके अंदर मामला ये होता है कि आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता सिवाय ऑफ बटन के, या तो आप उसको ऑफ कर दें, ठीक है ना, वरना जब तक वो ऑन है वो किसी और के कंट्रोल में, और वो आपको दिखा रहे हैं, अब आप यानी देख रहे हैं उसको, क्योंकि जब टेलीविजन की तरफ से जो कैथोड रे ट्यूब होती है ना, या जो भी आजकल की जो वो जो जो नई टेक्नोलॉजी है, वहां से जो रेज निकलती है ना, तो ये बाकायदा रिसर्च, कंफर्म रिसर्च है, और ये हमारे मौलवियों की की हुई रिसर्च नहीं है, उन्हीं के जो साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकैट्रिस्ट हैं, उन सब की हुई रिसर्च है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो जाता है उन इमेजेस से, और वो इमेजेस जो होते हैं ना, उनकी जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट का भी बड़ा बड़ा अमल होता है कि ये जो फास्ट मूविंग इमेजेस होते हैं ना, जितना तेज मूविंग इमेजेस होंगे, देखने वाले की आंखें और उसका दिमाग उतना ज्यादा उनकी तरफ जो है ना, वो होगा यानी कंप्लीटली यानी उस तरफ मुतवज्जो होगा, ठीक है, और इतना ज्यादा मुतवज्जो होगा कि उसके लेफ्ट और राइट पे क्या चीजें हो रही हैं, वो उनसे बिल्कुल यानी उसकी तवज्जो हटी हुई होगी, ठीक है। तो ये यानी टेलीविजन स्टेशन एक ऐसी, टेलीविजन स्क्रीन एक ऐसी चीज है कि जब आप इसको ऑन कर देते हैं ना, तो अब आपकी इधर उधर से तवज्जो खत्म, और ये जो स्क्रीन के ऊपर जो चीजें आ रही होती हैं, आप एक तरह से एक पैसिव रिसेप्टिव मोड में चले जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं, यानी आप एक्टिव नहीं होते कि अब मैं डिसाइड करूं कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस चीज को मुझे एक्सेप्ट करना है, किस चीज को मुझे रिजेक्ट करना है, किस चीज को मुझे लेना है, किस चीज को नहीं लेना है, ये अब आप एक्टिव मोड में नहीं होते, बल्कि आपका दिमाग जो होता है वो पैसिव मोड में चला जाता है, ठीक है ना। चले, बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, बड़े मेच्योर्ड हैं, अदरवाइज बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े इन कंट्रोल किस्म के लोग हैं, तो वो तो फिर थोड़ी बहुत एक्टिव मोड में रहेंगे, लेकिन जितना छोटी उम्र के लोग होते हैं, बच्चे, तो वो तो बिल्कुल ही पैसिव मोड में चले जाते हैं, ठीक है ना, यानी सिर्फ रिसीव कर रहे होते हैं जो कुछ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा होता है, उनका दिमाग उनको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। तो पैसिव रिसेप्टिव मोड में दिमाग चला जाता है, बच्चों का 100% चला जाता है, और जितना ज्यादा बंदा मेच्योर होता है वो उसके हिसाब से फिर वो ये 100% जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता है, किसी का 50% पैसिव रिसेप्टिव मोड में जाता है, किसी का 60% रिसेप्टिव मोड में जाता है, किसी का 80%, और किसी का जो है वो सिर्फ 10% जाता होगा, ठीक है। तो टेलीविजन के साथ जो है ना, वो ये जो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ऊपर तो कोई फतवा शतवा नहीं चल सकता, ठीक है ना, कि हाँ भाई हलाल है या हराम है, ये तो है, ये तो एक साइंटिफिक मटीरियल रियलिटी है, इस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है कि जी अगर आप भाई, जैसे आपने सवाल किया कि अगर आप इस तरह के केबल कनेक्शन और डिश कनेक्शन वाले, या इंटरनेट से जो आपने वो सब्सक्राइब किए हुए चैनल्स, अगर आप उसके बगैर कोई स्क्रीन रखें अपने घर के अंदर, ठीक है ना, जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन होती है और फोन की स्क्रीन होती है, ठीक है ना, वो किसी नेटफ्लिक्स टाइप के किसी चैनल से सब्सक्राइब नहीं है, वहां की आपने कोई आईडी नहीं बनाई हुई है, बल्कि बस आपने रखा हुआ है उसको, तो अब ये जायज है कि ये नाजायज है, ठीक है। तो अब ये जो मामला है ना, ये है जरा सा, यानी ये जरा सा नहीं है, ये पिछले मुकाबले मामले के बारे में जरा और भी ज्यादा मुश्किल मामला है, ठीक है ना, कि भाई आप इसको क्या फतवा लेकर के आए इसके ऊपर कि जी क्या तस्वीर जायज है कि तस्वीर जायज नहीं है, है ना। अब ये इसके ऊपर बहुत सारे उलमा ऐसे हैं कि जो कि इसको जायज भी करार देते हैं, ठीक है ना, और उनके उनके पीछे दलायल हैं, उनके उनके रीजन हैं इसके, कि ये जो तस्वीर आती है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये जायज कैसे है, और बहुत से उलमा ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, ये जो स्क्रीन की तस्वीर है ये भी नाजायज है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी उन हदीस मुबारक का इतलाक होता है कि जिसने तस्वीर बनाई उसको कयामत के दिन बहुत बड़ा अजाब होगा, और उससे कहा जाएगा कि जी तुम इस तस्वीर के अंदर जान डालो, ठीक है। तो अब ये जो एक बहस है ना, तो ये तो इसके अंदर तो यानी एक एक इल्मी इख्तलाफ भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, इल्मी इख्तलाफ भी है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल जायज है, या बैन बैन का मामला है। ठीक है, तो अब ये जो सिचुएशन है ना, इसके अंदर ना फिर इंसान के अपने जाती अहवाल वगैरह फिर शामिल होना शुरू हो जाते हैं, किसी क्या उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो इन स्क्रीन्स को बिल्कुल अपने घर से निकाल करके जिंदगी गुजार सके, राइट? इस वक्त जो है वो क्या ऐसा मुमकिन है हमारे लिए? ठीक है, या ये कि आप जिंदगी तो चले गुजार, यानी आप जो है वो जरूरत के तहत जो है वो इन स्क्रीन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर के अंदर, ठीक है, लेकिन क्या आप इन स्क्रीन्स को जो है वो अपने बच्चों को कुछ इस्लामिक कार्टून जिनको कहते हैं, राइट, या कुछ इस किस्म के जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं वो एजुकेशन के प्रोग्राम्स दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है ना, तो अब ये सब डिस्कशन जो है ना, तो इनके अंदर जो है ना फिर वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो जाती एक एक समझने के मिजाज है या समझ है इस मामले के अंदर, वो ये है कि इसमें फतवे नहीं चलते। ठीक है ना, ये फतवों वाला मैदान अब नहीं बनता, क्योंकि फतवे जो होते हैं ना फिर वो इन सिचुएशंस में फतवों का मामला ऐसा हो जाता है कि फिर वो हम यानी मनमर्जी के मामला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ना फिर फतवे जो है ना वो इतना इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, इसके अंदर जो है ना फिर वो यानी यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ठीक है, कि आपके लिए क्या चीज जो है ना वो यानी समथिंग दैट यू कैन नॉट डू अवे विद, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है ना, और क्या चीज जो है वो उसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें फिर ना फतवे नहीं चलते, इसके अंदर तकवा चलता है, इसके अंदर ऑनेस्ट फिक्र चलती है, और इसके अंदर सच्चाई चलती है। ठीक है, ऑनेस्टली कि आप अपने एक कोई आपका एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कोई आपका शेख होना चाहिए, ऐसी कोई फिगर होनी चाहिए आपकी जिंदगी में कि जो आपको अनबायस्ड आपकी खैर ख्वाही के लिए अनबायस्ड ओपिनियन दे सके, मशवरा दे सके कि भाई हाँ भाई आपके घर के हालात ऐसे हैं कि बस आप जो है ना वो इस किस्म की एक स्क्रीन लगा लें अपने घर के अंदर, अगर नहीं लगाएंगे ना तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है ना, तो आप इस किस्म की एक स्क्रीन जो कि पीछे से केबल से कनेक्टेड ना हो, ऐसी स्क्रीन को लगा लें। ठीक है ना, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो अब उन्होंने जो आपको ये मशवरा दिया है ना, तो अब इसके तहत फिर आप ये काम करें। ठीक है ना, लेकिन ये यानी एक ऑनेस्ट अनबायस्ड ओपिनियन के तौर पर ही फिर आपको लेकर के चलना होता है, इसके अंदर फिर ये फतवों वाला मामला नहीं चलता है। ठीक है, अब ये बात जो हुई है तो अब इसमें मुझे एक और भी बात याद आ गई कि पिछले दिनों जो ये अल्तो क्या है होते हैं ना, अतोरल अल्तोरल वगैरह जो भी नाम है इसका, टर्किश ड्रामा सीरियल, ठीक है, तो इसके बारे में वैसे तो हम एक दो क्लासेस में पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब उसके ऊपर हमारे बात करने के बाद जो है ना वो एक भाई ने एक फतवा भी भेज दिया। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से फतवा आया कि भाई किसी ने उनको सवाल भेजा था कि भाई मैं तो नहीं देखता लेकिन बहुत सारे लोग इससे एडिक्टेड हुए हुए और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो क्या उनके लिए देखना जायज है बजाय इसके कि नाच गाने के प्रोग्राम देखें, क्या अल्तुतरुल देखना उनके लिए जायज है कि जायज नहीं है? ठीक है ना, तो उसके ऊपर दारुल उलूम देवबंद ने फतवा लिखा कि भाई ये जायज नहीं है। ठीक है ना, ये यानी यानी इसके अंदर जो गुनाह के काम हो रहे होते हैं, बदनजरी जिनमें से एक है, तो इन गुनाहों की वजह से ये ड्रामे सीरियल वगैरह जो होते हैं ना ये जायज नहीं होते, और ये अल्तुतरुल भी उसके अंदर जायज नहीं है, बेशक उसके अंदर कितनी जो है वो ईमान की और तकवे की और इन सब चीजों की बात की जा रही हो, ठीक है, तो ये जायज नहीं है। ठीक है, तो अब जब ये फतवा जो है हमने अपने जो खास जो जो जो, जो, जो यानी आलिमा और आलिम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने शेयर कर दिया। ठीक है ना, देखिए आप लोगों ने शायद गौर किया हो, जो लोग हमारे दीन एसेंशियल्स प्रोग्राम के ऊपर भी हैं, ठीक है ना, इस हाजिज ने वो फतवा जो है वो दीन एसेंशियल्स के ऊपर नहीं भेजा। ठीक है, ये फतवा कहाँ भेजा? हमारे दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है आलिम सालिक तफसीर ग्रुप और दूसरा ग्रुप है आलिमात सालिकात तफसीर ग्रुप, यानी एक मर्दों का है एक औरतों का है। ठीक है ना, मर्दों के ग्रुप में वो लोग हैं जो कि आलिम बन रहे हैं या बाकायदा इस्लाही ताल्लुक में रह करके वो जिक्र की मेहनत कर रहे हैं, अपने तज़किया नफ्स की मेहनत कर रहे हैं। तो ये दो ग्रुप जो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो आलिम बन रहे हैं या जो सालिक हैं, आलिम नहीं बन रहे लेकिन अपने इस्लाह की संजीदगी के साथ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हाजिज ने वो फतवा सिर्फ इन ग्रुप्स के ऊपर भेजा, دین ایسنشلز کے اوپر نہیں بھیجا, نہ تو رمضان تفسیر گروپ کے اوپر بھیجا. ٹھیک ہے, کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کا ہمیں نہیں پتا وہ کس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, کیا ان کی ذہن میں فکریں چل رہی ہیں, کیا ان کی سوچ ہے, کس طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. بھائی گروپ جوائن کر لیا, کسی نے فارورڈ کیا, انہوں نے گروپ جوائن کر لیا, اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے, لیکن کتنا سیریس ہیں وہ اس معاملے میں یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. تو اس وجہ سے جو فتوے والا معاملہ ہوتا ہے نا, یہ فتوا ہر ایک کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جن کی نگاہ میں علماء کرام کی بات کی اہمیت ہوتی ہے. رائٹ, علماء کرام کی اہمیت ہوتی ہے, اوبویسلی ان کی بات کی بھی اہمیت ہوگی, تو ان کو تو یہ فتویٰ جو ہے وہ فائدہ دے گا. ٹھیک ہے نا, کیسے فائدہ دے گا؟ اگر وہ یہ ٹی وی سیریل دیکھنا شروع ہو گئے تھے یہ سوچ کر کے کہ ہاں بھائی اس میں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ یعنی دینی باتیں ہوتی ہیں, بڑی تقویٰ کی باتیں ہوتی ہیں, بڑی اس کے اندر جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور اس میں جو ہے نا ہمیں ہماری دینی غیرت جاگے گی, اور ہمارا جو ہے وہ اپنا رشتہ جو ہے نا وہ اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے جو دینی ہمارے بزرگ گزرے ہیں, مسلمان فاتح گزرے ہیں, حکمران گزرے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. تو اب یہ ان کے ذہن میں کیا ہے, یہ ایک خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ علماء جو حاضر دور کے علماء ہیں ان کو بھی اہمیت دیتے ہیں, ان کی بات بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ فتویٰ جو ہے نا, یہ فتویٰ کیا کرے گا, یہ فتویٰ ان کے ذہن سے اس کنفیوژن کو یا اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کرنے کا کام کرے گا. ان ادر ورڈز یہ فتویٰ کون سا والا کام کرے گا, پچھلی کلاسوں میں بات ہوئی ہے کسی تفسیر کی کلاس کے اندر, یہ فتویٰ کون سا والا کام کرے گا, کسی کو وہ لفظ ہے ذہن میں؟ اوہو یہاں تو میں نے جی ہاں جی بالکل صحیح جواب دیا, مردوں میں بھی, مردوں میں کسی کے ذہن میں جواب نہیں آ رہا, یہ فتویٰ کون سا والا کام کرے گا, کیا کیا لفظ استعمال کیا اس کے لیے؟ بھائی یہ فتویٰ جو ہے شک دور کرے گا نا, تو شک دور کرنے کا کام کیا کہلاتا ہے, فرقان. اگزیکٹلی, یہ فتویٰ جو ہے فرقان کا کام دے گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ قرآن فرقان کا کام کرتا ہے, رائٹ, تورات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کا نام استعمال کیا. ٹھیک ہے, تو یہ فرقان کا کام کرے گا تقویٰ, یہ جو فتویٰ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ علماء کو ہی نہیں مانتے, علماء کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, تو ان کے لیے بھی یہ فرقان کا کام دے گا؟ ان کے لیے تو یہ فرقان کا کام نہیں دے گا نا. ٹھیک ہے نا, ان کے لیے تو یہ یعنی اس کے کوئی اور جو ہے وہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ بغاوت کو بڑھائے گا, نفرت کو بڑھائے گا. یہ مولوی لوگوں کو تو فتوے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے, رائٹ, ان کو تو کسی چیز کے اندر اچھائی نظر ہی نہیں آتی, رائٹ. اتنا اسلامی پروگرام بنایا ہے, اتنا اس کے اندر اسلامی تاریخ. اچھا پہلی بات یہ کہ کون سی اسلامی تاریخ آئی, یہ الطغرل کے اندر کہاں سے اسلامی تاریخ آئی, ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, یہ کوئی تاریخ نہیں ہے, یہ ایک انٹرٹینمنٹ ڈرامہ ہے. اس کا تعلق جو ہے نا وہ صرف ایڈرینالائن کے ساتھ ہے, صرف جذبات کے ساتھ ہے, اس کے اندر کوئی تاریخی حقائق نہیں ہے. کہاں سے آ گئے اس کے اندر تاریخی حقائق, اس زمانے کی کوئی تاریخ ہی نہیں موجود ہے, رائٹ. لے دے کر کے ایک نام کہیں ملتا ہے اس بندے کا الطغرل, کہ ہاں بھائی وہ عثمان کا باپ تھا, باقی کہاں سے ساری تفصیلات آ گئیں؟ تو یہ تو ہے ہی نہیں, فیبریکیٹڈ سٹوریز ہیں ساری کی ساری, رائٹ. شو بزنس ہے جیسے آپ نے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا, رائٹ. یہ تو یعنی اٹ از بیسڈ آن جھوٹ. ٹھیک ہے نا, تو یہ کس قسم کا الحق ہے ہمارا دین کہ جس کو کہ جھوٹ کے بغیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا بھائی, کس قسم کا یہ حق ہے, رائٹ. تو یہ ایسا حق ہے نہیں, ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ دین جو ہے نا یہ جھوٹ کے سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے ہم پروپیگنڈا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ ہمارے اندر کا جھوٹ ہے, یہ ہمارے مزاج کا جھوٹ پن ہے, کہ جس طرح ہمارے زندگی کا کوئی معاملہ جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا نا, ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین کا معاملہ بھی جھوٹ کے بغیر نہیں چلے گا, رائٹ. اس وجہ سے نا ان ٹی وی ڈراموں کی ضرورت پڑتی ہے, جھوٹوں کو ذرا سا دین کے مزے لینے کے لیے एंट्री भी ड्रामों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम झूठ को छोड़ देंगे ना अपनी जिंदगी के अंदर, राइट, हम झूठ के जो हमारे ऊपर वबाल पड़ने वाला है इस दुनिया के अंदर भी जो पड़ रहा है और आखिरत में जो वबाल पड़ने वाला है ना, जब हमें उसका एहसास हो जाएगा ना, तो खुद ब खुद के टीवी ड्रामों के चस्के हमारे अंदर से निकल जाएंगे। ठीक है, तो मसला सारा के सारा जो है ना वो अंदर का है, बाहर का मसला नहीं है। तो टीवी के बारे में खैर जो सारी बातें हुई थी, तो अब यही है कि सच्चा होना जरूरी है कि आप अपना अनबायस ओपिनियन अपने शेयर के साथ लें कि भाई आप का गुजारा जो है वो इसके बगैर चल सकता है, या आपको जो है वो इस्लामिक कार्टून और इस्लामिक प्रोग्राम्स की जरूरत है, उसके बगैर आपका घर के अंदर दूसरे ही तमाशे होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसके मुताबिक फिर आपको मशवरा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल एहतियात तो इन द एंड यही है कि इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखा जाए, बच्चों को दूर रखा जाए। जो फिजिकल इंटरेक्शन वाले गेम्स होते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ होते हैं, वो तो अल्लाह रहम करे, पता नहीं इंसानियत का बनने के हवाले है। कुछ और लंबा अरसा हमारी सोशल डिस्टेंसिंग इसी तरह जब चलेगी ना, तो फिर हम हमारे हमारे साथ होने के हवाले है, या जितना कुछ हो चुका है और अब मजीद क्या होने वाला है, बस अल्लाह ही रहम करे। बहरहाल तो अब कुछ और कमेंट्स वगैरह पढ़ करके क्लास को खत्म करते हैं कि यार क्या शैतान ने सजदा नहीं किया था वो जिंदा है कि मर गया है। अच्छा, जिस शैतान ने सजदा नहीं किया था, नहीं आप इंशाअल्लाह तफसीर और पढ़ेंगे ना, तो कुरान के अंदर ही उस शैतान का जो है, यानी जिसका नाम इबलीस था, जिक्र आता है कि उसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक के दिन तक की मोहलत दी हुई है। ठीक है ना, यानी जब तक इंसानियत जिंदा है ना, उस वक्त तक ये इबलीस जो है वो जिंदा रहेगा और ये बस आखिर में ही जाकर के मरेगा। ठीक है, तो बाकी इसकी औलादें होती हैं बाकायदा, यानी इन जिन्नों की भी औलादें होती हैं, इनके यहाँ भी पूरा पूरा इनकी पूरी बस्तियां होती हैं और ये सब सिस्टम इनके यहाँ भी चलता रहता है। फर्क बैनल हक वल बातिल, कौन सा फतवा, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, अल-तुगरक के ऊपर दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा आया है कि ये हराम है। ठीक है, Is there any fatwa related about television released by Darul Uloom? Is there any fatwa? जी जी, उसी को तो जिक्र कर रहे थे। अच्छा, यहाँ बड़ों में क्या लिखा है कि क्या ये बात सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी फरमाई इसराइली रिवायात से, जब उमर रतान कोई रिवायत सुना रहे थे तो आपने फरमाया कि अगर मूसा भी आज आए तो मेरे शरीयत पे चलेंगे, फिर क्यों इन रिवायतों को मेंशन करते हैं उलमा? ये हदीस मुबारका तो है कि उमर हज़रत ने कोई बात कही थी, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना उसके ऊपर नागवारी, शदीद नागवारी का जिक्र का इजहार किया था, और उमर तआला ने उस वक्त फिर फरमाया था रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया व रसूला व बिल इस्लाम दीना, तो फिर आप का गुस्सा जो है वो फिर ठंडा हुआ था। ठीक है, लेकिन इस मुझे उसके एक्चुअली एग्जैक्ट अल्फाज इस वक्त जहन में नहीं है कि उमर हज़रत ने जो है ना वो एक इसराइली रिवायत वाली बात फरमाई थी, यानी कोई वाकया नकल किया था या कोई बाकायदा हुक्म नकल किया था। ठीक है, तो शरीयत के ऊपर चलना जो मामला होता है ना, वो अहकाम की बात होती है। ठीक है, तो यानी अहकाम के मामले में तो कोई यानी वो नहीं है, टू ओपिनियंस नहीं है कि भाई आप अहकाम जो है कुछ वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इसराइली रिवायात की बात हो रही है, तो उसमें अहकाम की बात नहीं हो रही, उसके अंदर जो है वो माजी के वाकयात की बात हो रही है सर। ठीक है, तो अब ये तो दोनों बातें डिफरेंट हैं। ठीक है, ही वॉज रीडिंग फ्रॉम देयर बुक, हाँ उमर तआला ने शायद उनकी बुक पढ़ी थी या कुछ इस तरह, खैर उसके अंदर जाहिर तफसीर है, तो वो उलमा के सामने तो ये तफसीलात होती हैं, तो जिन्होंने फिर इसराइली रिवायत को लिया भी है तो उनके सामने भी ये हदीस डेफिनेटली मौजूद थी। टेलीविजन एज LCD फॉर लेक्चर्स और एज स्क्रीन डजंट फॉल अंडर TV कैटेगरी एज मेंशन बाय आवर शेख, द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम थ्रू सैटेलाइट इज नॉट परमिसेबल। हाँ, तो अब ये जो LCD स्क्रीन वगैरह के ऊपर जो लाइव चीज़ें चल रही हैं, तो उसी के बारे में मैंने कहा था ना कि जी बहुत सारे उलमा इसकी इजाज़त का के भी कायल हैं और बहुत सारे उलमा इसकी भी इजाज़त के कायल नहीं भी हैं।
ठीक है, तो अब वो आपको अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से देखना पड़ता है ना, कि आप किसी यानी किसी कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर के आपने लेक्चर्स जो है वो इस तरीके से देने हैं, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर आप जो है वो जो परमिसिबिलिटी वाला फतवा है उसके हिसाब से फिर इसको कंडक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यानी दिस इज द वे कि आपने यानी उस कंपनी का काम, और इवन मतलब इवन दुनिया के अंदर बहुत से दीगर मामला जो है वो ऐसे ही चल रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप जहर पे शरीर हदूद का भी ख्याल रखेंगे कि इसके अंदर कोई आप यानी क्लियर जो गुनाह वाले मामला हैं वो तो नहीं कर सकते ना फिर भी, ठीक है। एनीवे तो ये जो फिर पर्सनल मामला आ जाते हैं इसके अंदर जो है वो आपको फतवों से ज़्यादा जो है वो तकवे के ऊपर अमल करना होता है। सो द आइडिया इज़ बेसिकली अबाउट कॉन्टेंट स्क्रीनिंग, content is halal or haram, not the device itself. The device is just like computer monitor. If you are able to screen content, for example on smart TVs and receivers, then we can continue using TVs or monitors or any viewing device like an iPad, phone, etc. देखें, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यानी याद दिला दूं कि ये आजिज मुफ्ती भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको कोई फतवा नहीं दे रहा, पहली बात कि ये परमिसिबल है कि ये परमिसिबल नहीं है, तो ये एक फतवा वाली जो एक एक मोड होता है ना, तो आई एम नॉट इवन ऑथराइज्ड टू गिव दैट, ठीक है। तो मैं आपको फतवा शतवा कोई भी नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन हमारा मामला जो है ना, ये हमारा काम यहाँ पे फतवा देना नहीं है, हमारा मामला जो है ना वो तो बेसिकली यानी तकवा को समझाना, ठीक है, और तकवा की तरफ माइल करना, ठीक है, और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमा दे कि हम दूसरों को तकवा की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमा दे तकवा की, ठीक है। तो ये जो है दिल के अंदर ये नीयत रख करके हमें आपको जो है वो तकवा सिखाना, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली यहाँ पे इस पूरे के पूरे लेक्चर का मकसद। तो इस वजह से ना जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट है इसमें कि जी क्या कंटेंट स्क्रीनिंग एज लॉन्ग एज आप कर रही हैं तो क्या आप केबल टीवी भी आपके लिए फिर जायज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आप उसके ऊपर जो कंटेंट दिखाया जा रहा है अगर आप उसको स्क्रीन कर लेते हैं, जैसे कि आपने वो चाइल्ड क्या कहते हैं मॉनिटर्स लगा लिए, ठीक है, और आपने जो है वो अपनी पर्सनल स्क्रीनिंग इस्तेमाल कर ली, ठीक है, तो फिर यानी आप खुद जो है वो यानी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई कोई गंदी चीज आएगी फौरन जो है वो ऑफ कर देंगे, और कोई फिर उसके बाद जो है ना आपको ऊपर से वही आएगी कि अब जो है ना वो अच्छी चीजें दिखानी शुरू कर दी उसे अब आप ऑन कर देंगे, ठीक है ना, फिर गंदी चीज आएगी फिर आप ऑफ कर देंगे, या फिर आप ऑफ नहीं करेंगे आप क्या करेंगे आप मुंह मोड़ देंगे, या फिर आप माशाल्लाह कुरान के हुक्म पे अमल करेंगे, कुल लिलमुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, है ना, आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए उधर से जो है वो खातून ने कपड़े उतारे इधर आपने अपनी निगाहों को नीचे किया, है ना भाई, माशाल्लाह ईमान की मजबूती तो यही होनी चाहिए कि कुरान का हुक्म याद आ जाए उस वक्त और आप अपनी निगाहों को नीचा कर लें, ठीक है ना, और आपके पूरे घर वालों के अंदर भी यही होना चाहिए कि सब अपनी निगाहों को नीचा कर लें, ठीक है। तो जबरदस्त फिर तो बात ही कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन शायद आपने हमारी पिछली कुछ क्लासेज अटेंड नहीं करी थी जिनके अंदर जो है ना हमने आयात नंबर सूरह बनी ये जो सूरह फुरकान हम पढ़ रहे हैं तो कौन सी आयात थी भाई, हाँ आयात नंबर 28, 29, तो इसकी तफसीर वाले जो क्लासेज है ना अगर आप उनको सुन लें और आप उनको या तो पहले भी सुन चुके थे दोबारा सुन लें, ठीक है, तो वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट और एक एक एंटिटी के बारे में बहुत तफसील के साथ बात करी थी, वो क्या चीज थी, उसको कहते हैं शैतान, ठीक है। तो ये जो शैतान है ना ये एक ऐसी चीज है कि जिससे कि ना हम अपने आप को कभी भी महफूज नहीं तसव्वुर कर सकते, ठीक है ना, और जब सामने उम्मुल खबाइस मौजूद हो तो अब शैतान साहब जो होते हैं ना वो तो फिर माशाल्लाह फिर तो यानी कहते हैं ना वो क्या पोपाय द सेलर बचपन में हम देखते थे ना पोपाय द सेलर मैन है वो पोपाय वैसे तो छोटा सा होता था लेकिन जब वो स्पिनिच का जो पीता था ना
कैन खोल करके, तो फिर उसके जो मसल्स बड़े हो जाते थे एकदम से, है ना, वो बहुत ही यानी ताकतवर बन जाता था। तो पोपाय द सेलर मैन को स्पिनिच इतना ज्यादा ताकतवर नहीं बनाता होगा जितना कि जो टेलीविजन है ना वो शैतान को ताकतवर बनाता है। ठीक है, तो अब वो शैतान तो हर वक्त पीछे लगा हुआ है ना, हर वक्त साथ लगा हुआ है ना, तो सामने चल रही है टीवी स्क्रीन, ठीक है ना, और बराबर में मौजूद है शैतान साहब। तो अब ये इतना आसान नहीं होता कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम के ऊपर अमल करना। ठीक है, जैसे आप फरमा रहे ना पर्सनल स्क्रीनिंग, कंटेंट स्क्रीनिंग कर ली, तो भाई कंटेंट स्क्रीनिंग करना अगर इतना आसान होता ना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है नहीं, बल्कि इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना कि ला तकरबुज जिना, राइट, ये नहीं फरमाया कि ला तजिनु या जो भी इसका नहीं का सीगा बनता है कि जिना मत करना, बल्कि क्या फरमाया, ला तकरबुज जिना, जिना के करीब भी मत जाना। क्योंकि जब तुम किसी ऐसे मौके पे पहुंचोगे ना, ऐसी जगह पे पहुंचोगे जहां पर जिना की दावत दी जा रही है, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ, तुम नहीं अपने आप को बचा सकोगे। ठीक है ना, देखो मैंने शैतान भी बनाया हुआ है, राइट, अल्लाह ताला को मालूम है ना कि अल्लाह ने शैतान बनाया हुआ है, राइट, और मैंने तुम्हारे अंदर नफ्स भी रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसको के बड़े मजे आते हैं इन सारे कामों के अंदर, देखने में भी, सुनने में भी, और इनको बाकायदा करने में भी। ठीक है, तो तुम इन चीजों के करीब मत जाना, ठीक है ना, वरना नहीं बच सकोगे। तो इस वजह से ये कंटेंट स्क्रीनिंग लिखने के एतबार से बड़ा जबरदस्त वर्ड है, लेकिन इज इट इवन प्रैक्टिकल, डू वी वॉन्ट टू टेक सच अ रिस्क, डू वी वॉन्ट टू रिस्क आवर आखिरा, राइट, विद सो मच कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्व्स कि हाँ जी मैं तो बचा लूंगा अपने आप को, मैं तो अपनी निगाहों को झुका लूंगा। अच्छा, आप झुका लेंगे, आपके बच्चे भी झुका लेंगे, राइट, और आपके घर के दूसरे अफराद भी झुका लेंगे। नहीं झुकाया तो जितना उनका गुनाह होगा वो सारा का सारा गुनाह जो है वो आपके भी नामे अमाल के अंदर लिखा जा रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत 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 घाटे का सौदा है। ठीक है ना, तो अपने ऊपर हम एतमाद नहीं कर सकते। इसके ऊपर बाकायदा हमने लेक्चर्स भी किए हैं तफसीली, कि हमारे दीन ने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कंप्लीटली निगेट किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली निगेट किया है इसने। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे सामने इस किस्म के तमाशे चल रहे हो और हम जो है वो उनसे अपने आप को और अपने घर वालों को बचा सकें। ठीक है, और क्या कमेंट्स लिखे, जरा मजनू जब देख करके मौत की तरफ बहुत सारे आ रहे हैं, वो बाद में आता उस तरफ। सो दिस इज नॉट द आइडिया, सेल्फ स्क्रीनिंग इज नॉट द आइडिया एट ऑल। फैब्रिकेट ए हिस्ट्री एंड शो दैट ही वाज रियल फॉर जनरेट टू स्टॉप कॉन्शन ऑफ योर टॉक कॉन्शन। तौहीद के नमाज पे क्या, तो ताहूद की, यहूद की नमाज में सजदे में कोई दुआ मांग सकती ही क्या, सिर्फ सुभान, क्या लिख रहे हैं आप, पढ़ना चाहिए सुभान रब्बी अल आला। नफिल नमाजों में आप जो सजदा करते हैं तो उसमें आप दुआई मांग सकते हैं, लेकिन वो दुआएं भी जो है ना वो यानी अरबी में ही होनी चाहिए, उलमा ने यही लिखा है। और उलमा एंड मुफ्ती डोंट अप्रूव टेलीविजन एट होम, मीनिंग टीवी विद न्यूज चैनल्स एंड एक्टिव कनेक्शन, डेफिनेटली नॉट, दे डोंट अप्रूव। कंटेंट स्क्रीनिंग इटसेल्फ विल डू सिनिंग, इटसेल्फ विल डू सिनिंग। हाँ, मतलब जाहिर है आप अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ जब टकराने की कोशिश करते हैं ये कह करके कि नो आई कैन हैंडल माई सेल्फ, तो ये तो सोच ही तक का पुराना सोच है ना। तो जब सोच ही गलत हो तो फिर वो अमल कहाँ से उससे निकलेगा, कोई नेक अमल कहाँ से निकलेगा इस गंदी इस बुरी सोच के अंदर से। ठीक है, ख्वातीन की तरफ कुछ मैसेजेस हैं, उनको पढ़ करके कुछ क्लास खत्म करते हैं। कि कुरान पढ़कर उसका इशारे सवाब किसी एक मरहूम दिया जा सकता है या तमाम मरहूमिन को भी किया जा सकता है? जी, सबको किया जा सकता है, पूरे पूरे के पूरे मुसलमान जो दुनिया से गुजर चुके हैं उन सबको किया जा सकता है। पेरेंटल कंट्रोल, जी, टीवी में आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या देखना है? नहीं, शैतान जब तक है ना जिंदा, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या देखना है, वो आपको करने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इस किस्म के रिस्क जो है ना वो जायज नहीं है। ठीक है, अगर आप चले चले आपके लिए खातिर, या जो है वो मुफ्ती की टोपी पहन लेता है, ठीक है, मुफ्ती की टोपी,
ठीक है, मुफ्ती की टोपी पहन करके ना चले आपको फतवा देते हैं कि नहीं जी टीवी जायज नहीं है, बस अब कर लें उसके बाद क्या करना है। टीवी को बेकार नहीं कहा, ऑफकोर्स टीवी बेकार है, बल्कि सबसे ज्यादा बुरी चीज है, उम्मुल खबाइस है। टीवी बेकार ही नहीं है बल्कि बदकार है, समझते हैं? बदकार और बेकार में फर्क क्या होता है? हम बेकार नहीं कर रहे, कह रहे, लेकिन गुनाह का इटर्नल ज्यादा इहतमाल ज्यादा है। उम्मीद है कि आपको ये शैतान वाली बात थोड़ी समझ में आई होगी। कैसे? आप डिसाइड करिए क्या देखना है। ये आपने मेरा ये जो आपने मैसेज लिखा है कि आप डिसाइड करिए क्या देखना है, ये आपने शैतान के बारे में टॉक के बाद ये मैसेज लिखा है या उससे पहले लिखा था? अगर पहले लिखा था तो उम्मीद है कि शैतान का जिक्र करके फिर आपको जिक्र सुन करके आपको कुछ बात समझ आ गई होगी, और अगर उसके बाद लिखा है तो फिर आपके साथ अभी बात करने का कोई मजीद फायदा भी नहीं है। मैं अब्दुल्सलाम, अच्छा क्या कहने के, अगर आपकी नजर मर्द एंकर पे पड़ी तो गुनाह बदनजरी का, मर्द की निगाह लेडी एंकर पे पड़ी तो गुना जी। तो अल्लाह ताला ने कुल लिल मुमिनीना यहुदु मिन अबसारहिम के बाद कुल लिल मुमिनात यहुदुना मिन अबसारहिन्ना, ठीक है, औरतों को भी मना किया है कि आप मर्दों को नहीं देख सकती हैं, ठीक है। बस फर्क खाली औरतों और मर्दों के दरमियान ये है कि मर्दों में तो अल्लाह ताला ने शहवत को जो है वो गालिब रखा है, ठीक है, तो इसका इहतमाल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना ये इहतमाली बुनियाद पर होती हैं, ठीक है, कि मर्दों के अंदर आप एक एक रफ फिगर अगर आप कहना चाहें तो 90%, ठीक है ना, रफ फिगर, आप इसको 91 कर ले, कोई इसको 93 कर ले, कोई इसको 85 कर ले, ठीक है, मैं हम एक बात समझाने की खातिर 90% का इहतमाल मर्दों के अंदर 90% इहतमाल, ठीक है, वो ये है कि जब औरत को देखेंगे ना, और वो जो एंकर होती है वो कोई बदसूरत तो नहीं आकर के उन्होंने बिठाई हुई होती है, ठीक है ना, तो वो भी तो बन संवर के आई होती है, बहुत खूबसूरत तरीन लड़कियों को पसंद करते हैं वो अपने एंकर के लिए, तो वो 90 बल्कि शायद 99% बोलना चाहिए, ठीक है, कि शहवत गालिब आएगी, ठीक है ना, वो अभी नहीं आएगी, बेशक उस वक्त ना आए, लेकिन जब नमाज पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त वो याद आएंगी, ठीक है ना, और तरावी में तो और भी ज्यादा याद आएंगी, क्योंकि तरावी में तो फिर वो मौलाना साहब जो है वो लंबी तरात कर रहे होते हैं और दिमाग जो है वो बिल्कुल ही फारिग होता है ना, तो कुछ समझ में आ रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो फिर तो वो एंकर ही याद आती है उस वक्त, है आती है आपको याद, महरा जिसको आती है वो बेहतर जानता है, तो फिर वो ऐसे मौकों पर ना वो एंकर साहब याद आती है मर्दों को, ठीक है, बीवियां भी सुनने कान खोल करके, ठीक है ना, फिर वो आप याद नहीं आती, हाँ आपके वो डरावने हरकतें जरूर याद आती होंगी लेकिन आप याद नहीं आती, बल्कि वो जो एंकर आपने अपने ख्वाहिश से टेलीविजन घर के अंदर रखा हुआ है ना, अगर आप उसका उसकी कॉज है घर में टीवी रखने की, तो याद रखें कि आपके जो हस्बैंड साहब है ना वो आपको याद नहीं करते, ठीक है, वो उन एंकर साहबों को याद करते हैं, तो अब आप खुद ही फैसला कर लें कि आपके लिए क्या ये टीवी रखना अच्छा है कि नुकसानदेह, ठीक है ना, तो मर्दों को तो ये फिर बहुत सारे मौकों पर याद आती है, ठीक है ना, तो इस वजह से चूंकि शहवत मर्दों पे अल्लाह ताला ने गालिब रखी है, ठीक है, औरतों के अंदर शहवत गालिब नहीं होती, मगलूब होती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होती नहीं है, औरतों में भी शहवत होती है, अगर नहीं होती ना तो फिर कुछ मामला नहीं चलता दुनिया का आगे, ठीक है ना, नस्लें इंसानों की नहीं चलती, औरतों में भी शहवत होती है लेकिन मगलूब होती है, इस वजह से औरतों का मर्दों को देखना ये उस तरीके से हराम नहीं है जैसे मर्दों को औरतों को देखना, ठीक है, तो मर्दों को औरतों को देखने के ऊपर शरीयत ने शदीद पाबंदी आयद करी है, लेकिन औरतों के मर्दों को देखने के ऊपर उस शिद्दत के साथ पर पाबंदी आयद नहीं करी है, ये डिफरेंस है, ठीक है, तो इस वजह से औरतों का फिर अब ये फिर वही शहवत वाली बात आ जाती है कि शहवत के साथ देखना, यानी अगर आप डेफिनेशन खाली इसकी लेना, हराम की डेफिनेशन ये होगी, बदनजरी की डेफिनेशन ये होगी कि शहवत के साथ देखना, ठीक है, तो औरत मर्द को देख रही है शहवत के साथ नहीं देख रही है, तो वो बदनजरी और हराम के डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है, जैसे कि सहाबियात से मनकूल है कि वो देखती थी मर्दों को, ठीक है ना, लेकिन उनके बारे में सारे जो हदीसें और कुरान की रोशनी में क्या फैसला होता है कि उनके अंदर शहवत गालिब नहीं होती थी, वो देखती थी, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, राइट, वो वहशियों का जो जो हो रहा था, ठीक है ना, हबशियों का जो खेल हो रहा था,
ठीक है, क्योंकि औरतों के अंदर गालिब नहीं होती, ठीक है, लेकिन मर्दों के अंदर तो गालिब होती है भाई, ठीक है, उनको तो एक के ऊपर गुजारा भी थोड़ी होता, वो तो कम अज कम चार की इजाजत हो तो चार तो पूरे करने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो इनको मसला ये पड़ा हुआ है कि इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो क्या किया जाए जब आजकल की सारी मालूमात रखनी हो, कहाँ से लाएं हम इन्फॉर्मेशन, ये क्या ये जो तफसीर क्लास हो रही है इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके लिए काफ़ी नहीं, ठीक है भाई, इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाती है, इसके लिए ये केबल कनेक्टेड टेलीविजन होने की शर्त जो है ना वो तो हमने लगाई हुई है ना कि जी जब तक ये केबल कनेक्टेड टेलीविजन नहीं होगा सब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। भाई आप, आपको पहली बात इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना, आपका घर का मामला है, आपने घर को के अंदर जो 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 आपको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियाँ लगाई हैं उन जिम्मेदारियों का हिसाब भी तो देना है कि नहीं देना है, वो जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं, बाकी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और मोदी साहब ने क्या कर दिया और फलाने साहब ने क्या कर दिया, ये इससे आपकी औलाद की तरबियत के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा होता है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन की हर एक को जरूरत होती भी नहीं है। पहली बात ये मर्दों का काम है, ठीक है, मर्द को किसी ना किसी तरह से बाहर से लोगों से बात करके ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना, औरतों का तो ये एरिया भी नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उनको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिलती तो भाई क्या एक टीवी रह गया इन्फॉर्मेशन के लिए, और कोई तरीका नहीं है इन्फॉर्मेशन के लिए, अखबार भी तो होते हैं राइट, और आपके मुख्तलिफ पढ़ने की चीज़ें होती हैं, लोगों से आपको चीज़ें पता लगती हैं, तो इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे ज़राए हैं, ठीक है ना, उसके लिए ये उम्मुल खबाइस को बहाना मत बनाना चाहिए कि उसको लिए हमने घर में रखना है क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन के बगैर गुजारा नहीं होगा, ठीक है, जो जो फ़र्ज़ इन्फॉर्मेशन है ना हमारे लिए, जो फ़राइज़ तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, जिसका हमें हिसाब देना है अल्लाह ताला के सामने, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन हासिल होगी उसकी तो अजाब होगा उसके ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है राइट, उसकी तो हमें फिक्र ही नहीं होती, और हमें जो है वो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और क्या पॉलिटिक्स चल रही है उसकी हमें बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, उसके लिए जो है वो सूअर को भी घर के अंदर लाने के लिए तड़प रहे होते हैं हर वक्त। अफवाह से कैसे बचा जाए, तो टीवी के ऊपर क्या आती है, टीवी के ऊपर अफवाह नहीं आती, टीवी के ऊपर सच आता है, क्या कहाँ चली गई है हमारी अकलें कि टीवी को हमने सच मानना शुरू कर दिया है, टीवी के ऊपर जितना झूठ आता है उतना झूठ तो आपको आपका कोई यानी अफवाह फैलाने वाला पड़ोसी भी नहीं दे सकता, ठीक है, सारी तो अफवाहें आती हैं इस टेलीविजन के ऊपर। इस्लाम में एंटरटेनमेंट का क्या सही तरीका है अगर टीवी ना देखा जाए यानी अगर टीवी ना देखा जाए तो फिर एंटरटेनमेंट कैसे की जाए, ये भी बड़ा मजे का सवाल आया है, क्या जवाब दिया जाए इसका भाई, इस्लाम में एंटरटेनमेंट के तरीके जो है ना वो, ये टीवी कब इजाद हुआ था, 1950 में, तो 1950 से पहले लोग दीन पे अमल नहीं करते थे, है? दीनी एंटरटेनमेंट या जो हलाल एंटरटेनमेंट के बगैर वो लोग क्या होते थे, वो लोग कोई क्या कोई पत्थर होते थे, वो लोग कोई जिन होते थे, कोई भूत होते थे, कोई मुर्दा होते थे, क्या होते थे वो लोग, जब टीवी से पहले वो हलाल एंटरटेनमेंट और के बगैर जिंदा रहते थे वो लोग, ठीक है, तो एंटरटेनमेंट का टीवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, टीवी जो है ना इसका ताल्लुक गुनाह के साथ है, एंटरटेनमेंट के साथ नहीं है, एंटरटेनमेंट जो है ना वो इसके बगैर बहुत सारी हो सकती हैं, घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ टीवी कई साल 20 साल से ज़्यादा हो गए, उससे पहले तो होता था लेकिन 20 साल हो गए तकरीबन टेलीविजन ख़त्म है, इसमें शादी भी हुई, इसमें बच्चे भी हुए, इसमें दूसरे रिश्तेदारों के साथ भी वक्त गुजरता है, सब कुछ होता है बगैर टीवी के, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हालात में रहते हैं, बच्चे भी मसरूफ़ रहते हैं राइट, माँ बाप भी मसरूफ़ रहते हैं, घर के अंदर भी लड़ाई झगड़ों से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे हद तक जो है वो बच कर के ज़िंदगी गुजर रही होती है, ठीक है, तो टीवी के बगैर ज़िंदगी का ज़रा तजुर्बा तो करके देखें राइट, इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए आपके आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, बोर्ड गेम्स होते हैं बच्चों के लिए बुक्स होती हैं, बच्चों के लिए अपने माँ बाप होते हैं बातचीत करने के लिए राइट, आपस में बातचीत करना होता है, ये टेलीविज़न के सामने बैठने वाला तो तस्वीर ही कोई नहीं है भाई, एक एक, एक सेहतमंद मुआशरे के अंदर इस टेलीविज़न स्क्रीन की कोई हैसियत नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह चंद ग्रुप के ऊपर भेज भी देगा जो कि अंग्रेज़ों की लिखी हुई बातें हैं इस टेलीविज़न के बारे में, ठीक है ना, जो जो अकलमंद है ना इनमें से भी नॉन मुस्लिम्स के अंदर से भी वो अपने घर में टेलीविज़न नहीं रखते हैं।
क्या वुमेन उर्दू डाइजेस्ट की स्टोरीज पढ़ सकती हैं? देखें, झूठ और खुसूसन उसके अंदर जो माशूकाना किस्म की जो स्टोरीज होती हैं तो उनको तो डेफिनेटली नहीं पढ़ना चाहिए। इस्लाही कहानियों की बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, तो उनको फिर भी पढ़ने की कोई गुंजाइश निकलती है, लेकिन ये जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज और खुसूसन उनके अंदर जो हराम बातें होती हैं तो उनको तो डेफिनेटली नहीं पढ़ना चाहिए। टीवी इज अ सोर्स ऑफ डिप्रेशन, हाँ इवेंचुअली इट लीड्स टू इवन जो मेडिकल डिप्रेशन वाली टर्म है ना, तो वो इवेंचुअली वो उस डिप्रेशन तक भी ले जाता है। एंटरटेनमेंट को डिफाइन करने की भी जरूरत है, हाँ मतलब जिससे जिसको तफरीह तबाह कहते हैं, आपकी तबीयत जो होती है ना वो लाइट फील करे, अच्छी फील करे, जिसको यानी आप जिसको हवाखोरी भी कहते हैं, बाहर निकलना, ठीक है ना, पर्दे के साथ औरतें भी बाहर निकल सकती हैं अपने मर्दों के को चाहिए मर्दों को कि वो औरतों को बाहर लेकर के जाएं, ठीक है ना, घरों के अंदर बंद करके रखना, टीवी के हवाले कर देना, तो इसका जो 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 गुनाह होगा ना वो सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं होगा बल्कि उन मर्दों के ऊपर भी होगा कि जिन्होंने अपनी औरतों को टीवी के साथ घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है और उसके ऊपर सो कॉल्ड दीन का लेबल लगाया हुआ है जिन लोगों ने, उनको तो और डबल गुनाह होना गुनाह होगा शायद, ठीक है। गेम्स बहुत सारे हैं, लूडो भी जायज, मुफ्ती बड़े मुफ्ती आजाद ने लूडो को भी जायज करार दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं, आप जरा वही बात कल की बात हो रही थी ना कि इंसान जिस रास्ते पर चलता है ना तो उस रास्ते के ऊपर तो उसको कंकर भी नजर आने शुरू हो जाते हैं और जिस रास्ते पर नहीं चलता उस रास्ते के ऊपर पहाड़ भी नजर नहीं आते उस रास्ते के, तो अब आप इस बे टीवी वाली जिंदगी के रास्ते पर चलना शुरू होंगे ना जब, तो आपके सामने बहुत सारे वेन्यूज खुलेंगे, बेशुमार आपके सामने ऐसी बातें खुलेंगी कि भाई अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, ये भी हो सकता था, ऐसे भी कर सकते थे, राइट। लेकिन अगर आप इस रास्ते को अपना लेंगे ना टीवी वाले रास्ते के ऊपर, तो अब आप उसको बे टीवी वाले रास्ते की सारी चीजें आपके नजरों से गायब हो जाएंगी और आपको सिर्फ इसी रास्ते के, अच्छा टीवी के ऊपर ये चैनल भी आ जाता तो कितना ज्यादा मजा आता और वो वाला भी आ जाता, अच्छा ऐसी स्क्रीन भी खरीद लेते तो ज्यादा अच्छा होता और वैसे भी हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, अब आपको इस रास्ते की सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। इस रास्ते के कंकर भी नजर आने शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी चीजें अब आपको चाहिए, अब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि अब आप इस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ना असल में हमें रास्ता तब्दील करने की जरूरत होती है, इसी को हमारे दीन की जुबान में तौबा भी कहते हैं, राइट। यू टर्न करना, इस टीवी वाले रास्ते से यू टर्न करके आप हलाल वाले रास्ते के ऊपर चलना तो शुरू हो ना, ये तौबा भी कहलाएगी और अब आप उस रास्ते के ऊपर आपके सामने बेशुमार आइडियाज जो है वो आपको जहन में अल्लाह ताला भी डालेंगे और जो नेक लोग होंगे उस रास्ते के ऊपर खड़े हुए, उस रास्ते के ऊपर आपसे पहले चलने वाले जो नेक लोग होंगे उनसे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और आपको फिर ऐसी जिंदगी गुजरेगी कि आप जो है ना फिर वाकई जो है ना वाकई वाकई आपको जन्नत के मजे इस दुनिया में आने शुरू हो जाएंगे, जन्नत के मजे इस दुनिया में आने शुरू हो जाते हैं जब आप इस रास्ते के ऊपर, दीन के रास्ते के ऊपर, तकवा के रास्ते के ऊपर, जिक्र के रास्ते के ऊपर चलना शुरू होते हैं, ठीक है ना। फिर ऐसी कैफियत पैदा होती है कि इंसान के दिल से और जुबान से शुक्र ऐसा जारी होता है कि उसको फिर याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो और इस मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और ऐसी दुआ पढ़नी चाहिए, हर वक्त उसके जुबान से दुआ जारी होती है, हर वक्त उसकी जुबान से शुक्र जारी होता है, अल्लाह ताला उसको ऐसी जिंदगी अता फरमाते हैं। इसी घटिया सड़ी हुई गली हुई दुनिया के अंदर रहते हुए ऐसी जिंदगी मिल जाती है, ठीक है। तो चाहिए कि हम इसका मजा करके देखें, मरने से पहले अगर ये जिंदगी हासिल हो गई ना तो मरने के बाद ये कंटिन्यू होगी और इससे भी ज्यादा बेहतरीन जो है वो आलम बरज़ख में मिलेगी और उससे भी ज्यादा बेहतरीन रोज़े महशर में मिलेगी और उससे भी ज्यादा बेहतरीन जन्नत में जाकर के मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरे रास्ते पे इसी दुनिया में चलने पे कायम रहे ना तो मरने के बाद उससे भी ज्यादा बुरी जिंदगी आलम बरज़ख में मिलेगी, उससे भी ज्यादा बुरी जिंदगी क़यामत के दिन मिलेगी और उससे भी ज्यादा बुरी जिंदगी जहन्नम में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला ने ना यू टर्न के लिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है, अभी यू टर्न कर लिया तो कर लिया, बाद में यू टर्न नहीं होने वाला है, ठीक है। हयातुन तैयबा जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं। घर में बेकिंग ड्राइंग विद किड्स एंड हस्बैंड्स ऑफ कोर्स, राइट। माशाल्लाह लॉकडाउन के अंदर लोग महीनों से बंद हैं, और जो बेटीवी जिंदगी वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह, अपने बच्चों के साथ जो है वो एक से एक बेकिंग भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, दूसरे गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और उनको कोई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है लोगों की। घर में टीवी रख सकते हैं, सिफ्टर्स नाते देखने जा, नहीं नाते देखनी है ना तो फोन है ना बस, ठीक है, फोन के ऊपर आप नाते सुन सकते हैं, टीवी की कोई जरूरत नहीं है नातों को सुनने के लिए, ठीक है। ये शैतान का बहाना है कि मैंने तो नाते सुनने के लिए टीवी रखा हुआ है, ठीक है। वो नातों के बहाने जो है ना, फिर वो उसके बाद सब कुछ करवाएगा उसके ऊपर। आप नहीं करेंगे तो क्या हुआ, और लोग नहीं है घर में करने वाले, ठीक है, वो करेंगे, अल्लाह ताला करवाएंगे आपको सजा देने के लिए, ठीक है। तो नातों को बहाना मत बनाए। जो लोग ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, उसमें जीत के एक रकम मुतय्यन की जाती है, जो बज़ाहिर अमाउंट नहीं होती मगर डॉलर यूज किया जाता है। क्या इस तरह की गेम जिसमें अमाउंट या अमाउंट की तरह के नंबर्स इन्वॉल्व हो, खेलना ठीक है? भाई ये तो आप जो मुझे सूरत बता रहे हैं, ये सूरत तो वही बन रही है ना कि बेसिकली अभी जुआ नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जुए की तरफ जो है वो माइल किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए, डेफिनेटली बचना चाहिए। बाकी इसके ऊपर फतवा क्या है ये मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन सा वाला गेम की। वो जो डाइस की हुरमत आई है ना, कि वो जो लूडो के अंदर जो डाइस इस्तेमाल होते हैं, पाशा जिसको कहते हैं, तो उसकी जो हुरमत आई है ना, तो वो एक अलग गेम होता है, जिसको क्या कहते हैं, नर्द शेर कहते हैं बकायदा, और अंग्रेजी में भी इसकी पूरी टर्म है, ठीक है। वो नर्थ शेयर जो गेम है ना, वो शायद वो वही इसी किस्म की चीज़ है जो कि आप अभी बता रहे हैं, वो बिल्कुल हराम है, ठीक है। लेकिन लूडो वाला जो गेम जो होता है ना, ये सिर्फ डाइस की वजह से हराम नहीं हो जाता, ये बस एक बच्चों के लेवल की चीज़ है कि जिसमें आपके नंबर आते हैं, फिर आप उसको आगे बढ़ाते हैं और बस, ठीक है। लेकिन पैसों वगैरह की इन्वॉल्वमेंट या पैसों के कॉन्सेप्ट की इन्वॉल्वमेंट, ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता किसी को माइल कर रहे हैं हराम की तरफ। नात वगैरह सुनने में मर्द खवातीन को सुन सकते हैं, नहीं, खवातीन की तो आवाज ही का पर्दा है अगर वो सुरीली आवाज हो, ठीक है। तो नात के अंदर जो है वो, यानी करख्त आवाज में क्या वो नातें पढ़ती हैं खवातीन, है? करख्त आवाज में खवातीन को हुक्म है कुरान के अंदर, ठीक है, कि मर्दों से जो है वो सख्त आवाज को सख्त बना करके बात करो। तो नातें भी क्या है वो सख्त आवाज में पढ़ती हैं, जो मर्दों के लिए नातें सुनना जायज हो जाएगा, बिल्कुल नाजायज है औरतों की नातें सुनना। इसी तरह खवातीन मर्द नात ख्वान को सुन सकते हैं, हाँ खवातीन मर्द नात ख्वान को सुन सकती हैं, ठीक है। और एजुकेशनल गेम्स अलाउड ऑन टैबलेट्स और लैपटॉप्स, एजुकेशनल गेम्स अलाउड ऑन टैबलेट्स और लैपटॉप का मामला यही है कि जी अब आपका गुजारा इसके बगैर नहीं नहीं हो पाए तो आप कर लें, ठीक। लेकिन ये वही पर्सनल मामला है कि पूछना चाहिए कि जी मेरे लिए क्या क्या मशवरा है। पतंग अगर बच्चे फादर के साथ उड़ाएं तो कैसा है? सवाल इसलिए किया कि इसमें दौड़ों की पतंग कटती है या क्या ये जायज है, दूसरों की पतंग कटती है या ये जायज है? अच्छा, खवातीन मर्द नात ख्वान को सुन सकती हैं, जी सुन सकती हैं, ठीक है। और उसकी वजह यही है कि खवातीन में शहवत गालिब नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से आजकल मशायख के यहाँ जो है वो नातें जो है वो मर्दों से पढ़वाई जाती हैं, और उसको खवातीन भी सुनती हैं। तकवा का वैसे आला मेयार जो होगा ना, वो तो यही होगा कि खवातीन मर्दों की नातें भी ना सुने, लेकिन आला मेयार जो है वो एकदम से ही आया था ना, कि सुबह को रात को सोया, सुबह को आला मेयार पे फायद हो गया, तो इस वजह से ना वो नातों का सिलसिला जो है वो जवाज की हद तक है, तो बस उसको उसी हद तक रखें। लेकिन नातों को सुनने से जो है ना, वो ना तो दीन का इल्म हासिल होता है और ना हकीकी मानों में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मिलती है, ठीक है ना। वो आपको हाँ थोड़ा सा जो है ना वो कचौके वगैरह फील हो रहे होते होंगे नाते सुन करके नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वगैरह की, लेकिन ये इब्तदाई दर्जा होता है, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। ये नातों को सुनकर के जो आपसे सनम की मोहब्बत वाली बातें की जाती है ना, ये हकीकत नहीं होती है, बात कान खोल करके सुन लें, ठीक है ना। ये होता है बिल्कुल किंडरगार्टन लेवल की मोहब्बत, बात समझ में आ रही है, किंडरगार्टन प्रेप,
नर्सरी लेवल की मोहब्बत जो होती है ना, वो नातों को सुन करके होती है, ये असल मोहब्बत नहीं है। एक ईमान वाला ना इस किंडरगार्टन लेवल मोहब्बत के ऊपर जिंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है ना। इस मोहब्बत को बढ़ाने की जरूरत होती है, और मोहब्बत बढ़ाने के लिए नातों की तादाद बढ़ाने से मोहब्बत नहीं बढ़ती है, ठीक है। कि भाई अब जो है वो ज्यादा अच्छे नात खां की नात सुनूंगी तो और ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी, और ज्यादा नाते सुनना शुरू कर दूंगी तो और ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हाँ, और लोग अपनी सारी जिंदगी नातों के अंदर ही गुजारने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि असल में जो मोहब्बत बढ़ने का तरीका है वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करने से मोहब्बत बढ़ती है, राइट। वो तो करना बड़ा मुश्किल काम है ना, उसके लिए तो फिर अपने ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा, अपनी लज्जतों को जरा कुर्बान करना पड़ेगा, जरा कुछ हुक्म शुक्म मानने पड़ेंगे, तो क्या यानी क्या जरूरत है इतनी मुश्किल करने की। नातों के अंदर ही रहे तो ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ना हम समझते हैं कि जी नाते, और नातों के लिए फिर जाहिर है टेलीविजन, राइट। क्यों इतनी बार बार लोग बात वो पूछेंगे नातों के लिए टीवी रख लें, इसलिए कि एक तो ये कि हम मोहब्बत को बढ़ाना नहीं चाहते, दूसरी ये कि शैतान को भी पता है कि किंडरगार्टन लेवल की मोहब्बत है, इसको खत्म करना मेरे लिए बड़ा आसान काम है, ठीक है ना। तो वो टीवी जो है वो उसके ऊपर नाते सुनेंगी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं इनको और इनके घर वालों को हराम में मुब्तला करूंगा, और फिर मेरे मजे, ठीक है। तो इसी वजह से ना ये बात याद रखें, ये नातों से नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है ना वो नहीं पैदा होती है और ना वो बढ़ती है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही केजी लेवल की मोहब्बत होती है, ठीक है। कार्ड्स खेल सकते हैं, यूनो का मुझे पता नहीं है कैसा गेम है, कार्ड्स के बारे में भी कोई इतनी पसंदीदा तो खैर बात नहीं आई है, लेकिन फिलहाल अगर उसके अंदर कोई हराम चीज इन्वॉल्व नहीं है तो देख लेंगे क्या फतवा है इसके ऊपर। आईपैड टैबलेट्स पर भी यूट्यूब होता है, बच्चे क्या बड़े भी। हाँ, यूट्यूब के अंदर फिर वही है कि एक दफा आप लग जाते हैं तो फिर उसका चस्का पड़ जाता है। तो भाई बात यही है कि ये सारी बातें जो है ना ये फतवों पे तो होती नहीं है। हमारे दीन ने एक सिस्टम दिया है, इस्लाही ताल्लुक वाला सिस्टम, ठीक है ना। कि आप दीन जो 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 अपनी जिंदगी में लाते हैं और गुनाहों को जो अपनी जिंदगी में से निकालते हैं ना, तो इसके लिए आपको एक फुल टाइम जो है ना ये कनेक्शन की जरूरत होती है, बाकायदा एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की जरूरत होती है, तब कहीं जाकर के बीमारियां रिमूव होती हैं। तो जब तक आप इस रिलेशनशिप में नहीं है ना, तो उस वक्त तक तो फिर आप इधर का रास्ता बंद करेंगे तो उधर से रास्ता निकाल लेंगे, राइट। टीवी को घर से निकालेंगे वो यूट्यूब के ऊपर शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब को बंद करने की कोशिश करेंगे वो जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप को बंद करेंगे फेसबुक के ऊपर शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई बात यही है कि ये तो चूहे बिल्ली वाला गेम है ना, ये चूहे बिल्ली वाला टॉम एंड जेरी वाला जो गेम है, तो अगर यही वाला गेम खेलना है तो आप रहें जैसे रहना है, जैसे जिंदगी गुजर रही है वैसे ही गुजारें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस चूहे बिल्ली वाले गेम से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है ना, और इस जिंदगी को जो है वो बाकायदा उस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा था, तो उसके लिए तो भाई सही ताल्लुक बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो प्रॉपर अपना इलाज करना पड़ेगा, और उसके लिए बाकायदा किसी डॉक्टर की निगहदाश्त में भी आना पड़ेगा। उसके बगैर तो इस्लाह नहीं होती, फिर तो वो चूहे बिल्ली की दौड़ी चलती रहती है सारी जिंदगी, और एक दिन आंख बंद हो जाएगी। जिंदगी का ये एक और वाहिद आखिरी अनोखा मौका जो अल्लाह ने दिया है खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात यही है असल में कि हम कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कुकिंग शोज फॉर एंटरटेनमेंट इज अलाउड विद म्यूट, नॉट फॉर फीड, ऑलवेज जस्ट फॉर फन। कुकिंग शोज जो है वो अगर तो उसके अंदर म्यूजिक है तो आप म्यूजिक को ऑफ कर दें, ठीक है। ऐसे कुकिंग शोज हमारे घर वाले बताते हैं कि बहुत सारे मौजूद हैं जिनके अंदर वो शक्लें भी नहीं दिखा रहे होते, आंटी जो है वो उनकी आवाज आ रही है कि भी ऐसे कर लें ऐसे कर लें ऐसे कर लें, और माशाल्लाह बेहतरीन जो है वो उसके अंदर डिशेज वगैरह का पता चल रहा होता है। अच्छी बात है ये, औरतों को इसके अंदर यानी लाइक एक परमिसेबल किस्म की एक चीज है, जिससे कि उनको भी माशाल्लाह टाइम अच्छा गुजर जाता है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं, कुछ दुआएं शुआएं मिल जाती होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं ना, यानी देयर आर वेज अराउंड इट टू, ठीक है। चलें, बहुत देर हो गई, क्लास का टाइम काफ़ी ओवर हो गया। अस्सलाम वालेकुम।